ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली पुलिस की दो हेड कांस्टेबलों ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 104 लापता बच्चों का पता लगाया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नरेला सिंधु बॉर्डर पर ग्रैप 4 के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में शाम 7 बजे तक AQI 401 दर्ज किया गया। राजधानी के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। दिल्ली पुलिस की दो हेड कांस्टेबल सीमा देवी और सुमन हुड्डा ने मार्च से नवंबर के बीच ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 104 लापता बच्चों का पता लगाया है। दिल्ली पुलिस की बाहरी उत्तरी जिला की मानव तस्करी विरोधी इकाई में तैनात सीमा देवी ने बताया कि उनकी पूरी टीम ने हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से बच्चों को बचाकर उनके परिवारों से मिलाया। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता से वे बेहद खुश हैं।
8.5 महीने में हमारे 102 केस हैं और बच्चे हैं 104, और ये सब करके बहुत अच्छा लग रहा है। जिनके बच्चे बहुत टाइम से मिसिंग हैं, उनसे भी तो कुछ तो वो भी होगी ना, गरीब हैं, लेकिन माता पिता भाई बहन उनके भी है ना।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नरेला सिंधु बॉर्डर पर ग्रैप 4 के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कई स्थानों से ग्रैप 4 के नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के चलते वे स्थिति का आकलन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। श्री राय ने उत्तर भारत के अन्य राज्यों से भी ग्रैप 4 को सख्ती से लागू करने की अपील की।
दिल्ली में जितने वाहन हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, उनको ग्रैप 4 के तहत जो है एंट्री बैन है। जो दिल्ली में CNG इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, BS6 की हैं, उनको एंट्री है। बाकी जो ट्रक्स हैं उनकी एंट्री बैन की गई है। जो लोग नहीं मानते हैं उन लोगों का चालान भी काटा जा रहा है।
राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे व्यापार मेले में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। मेले में देश विदेश के प्रदर्शकों के स्टॉलों पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता अमन यादव की एक रिपोर्ट।
सप्ताह के अंत में अंतर्राष्ट्रीय मेले में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। इस महीने की 27 तारीख तक चलने वाले इस मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालय के अलावा कई राज्यों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा मेले में चीन, मिस्र, अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण कोरिया के काउंटर भी हैं। इस मेले में हस्तशिल्प, स्वादिष्ट व्यंजन से जुड़े कई काउंटर भी हैं, जहां लोगों की काफी दिलचस्पी देखी जा रही है।
विभिन्न राज्यों से मेले में आए आगंतुकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस मेले में विभिन्न संस्कृतियों और हस्तशिल्प कला का सम्मिश्रण इसका प्रमुख आकर्षण है। गुरुग्राम से आए आगंतुक मनीष ने बताया कि व्यापार मेले में उनका अनुभव बेहद खास रहा।
मेले का एक्सपीरियंस अच्छा है, लोगों को अपनी जरूरत की चीजें भी मिल जाती है और कुछ ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं जो कि नॉर्मली हमको अवेलेबल नहीं होती हैं। खासकर जो छोटे MSME उद्योग हैं, उन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनके द्वारा बनाई हुई चीजें वो साल भर में एक बार हम आके ले जाते हैं और उनसे अलग अलग स्टेट का कल्चर भी देखने को मिलता है हमें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 401 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के वजीरपुर स्टेशन पर AQI 440, आनंद विहार में 426, अलीपुर में 425, पंजाबी बाग में 415, रोहिणी में 416 और आरकेपुरम में AQI 393 दर्ज किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए महाराष्ट्र के लोगों, खासकर युवाओं और महिलाओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह स्नेह और गर्मजोशी बेमिसाल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राज्य में विकास और सुशासन की जीत हुई है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि गठबंधन महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने झारखंड के लोगों को भाजपा के प्रति समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाने और राज्य के लिए काम करने में सबसे आगे रहेगी। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न उपचुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने के लिए विभिन्न राज्यों के लोगों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि वे उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 190 सीटें जीती हैं और 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन अब तक 53 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। जीत की खुशी में झूमते भाजपा कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाचते हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। कांग्रेस ने आज कहा कि पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करेगी। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी ने मान लिया था कि उसे राज्य में जनादेश मिलेगा। श्री रमेश ने जोर देकर कहा कि पार्टी अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी और सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को उठाना जारी रखेगी। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार दिल्ली के विकास मॉडल को ध्यान में रखकर काम कर रही है, जिसके चलते आज उपचुनाव में भी पार्टी को लोगों का समर्थन मिला है।
पंजाब में आज 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए, उनके नतीजे आए हैं। 4 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत गई है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को, जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेतागण को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की जीत पर जनता को हार्दिक धन्यवाद दिया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए कहा कि देश के 2 सबसे बड़े राज्यों की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास की राजनीति में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री सचदेवा ने कहा कि दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों ने दिल्ली में पार्टी कैडर का उत्साह बढ़ाने के साथ ही राजधानी में भाजपा सरकार लाने का दिल्लीवासियों का संकल्प और मजबूत किया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का नेतृत्व और महाराष्ट्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, उसका परिणाम है। और ये भी साफ साफ दिखाया है कि देश में अगर आप दुष्प्रचार करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, देश की जनता जवाब देती है और महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दिया। महाराष्ट्र के साथ साथ हम यूपी के 9 में से 7 सीटें जीते हैं, हमने राजस्थान की 7 में से 5 सीटें जीती हैं। तो आप समझ लीजिए कि कार्यकर्ताओं का उत्साह कितना है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव अभियान के अंतर्गत दिल्ली भाजपा जल्द ही पूरे शहर में एक परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के निर्देशानुसार परिवर्तन यात्रा के लिए 9 सदस्यीय समिति की घोषणा की गई है। इस समिति के संयोजक श्री सतीश उपाध्याय होंगे। भाजपा ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बनाई गई प्रदेश चुनाव संचालन समिति में बदलाव किया गया है। श्री सचदेवा के निर्देशानुसार प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल और कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुए श्री कैलाश गहलोत को समिति में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 25 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए नई दिल्ली में पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। पदयात्रा का विषय मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान है। एक रिपोर्ट।
इस पदयात्रा का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और संविधान की प्रस्तावना और लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में युवाओं को जागरूक करना है। इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। पदयात्रा में माय भारत वॉलंटियर्स, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर और भारत स्काउट्स एंड गाइड सहित विभिन्न संगठनों के 10,000 से अधिक युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए भानु प्रताप सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 का शुभारंभ किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम का हर अनुयायी अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना चाहता है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस बार सरकार ने हज यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं, सेवाएं और अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 4500 भारतीय मुस्लिम महिलाएं बिना मेहरम के हज यात्रा पर गई थीं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 नवंबर को आकाशवाणी के रंग भवन में नई चेतना पहल बदलाव की के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल होंगी। नई चेतना एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पहल के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और सूचित कार्रवाई करना है। ये अभियान 23 दिसंबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा। इस वर्ष के अभियान का नारा है एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जाता है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल द्वारा रेलवे कॉलोनियों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता पखवाड़ा और विशेष अभियान 4.0 के तहत सितंबर और अक्टूबर में आयोजित कार्यक्रमों को जारी रखते हुए शुरू किया गया है। रेलवे ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत सदर बाजार, तुगलकाबाद, लाजपत नगर, गाजियाबाद और अन्य रेलवे कॉलोनियों सहित मंडल अस्पताल और स्वास्थ्य इकाइयों में सफाई की जा रही है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। श्री दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को सामाजिक आयोजन बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। महोत्सव में देशभर से प्रमुख आध्यात्मिक हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रख्यात धार्मिक हस्तियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग करके इस आयोजन की पहुंच को और बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को संविधान के विभिन्न पहलुओं से परिचित करवाएगा। श्री ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलाधिपति नवीन जिंदल, कुलपति डॉ. सी राजकुमार और न्याय क्षेत्र के विद्वान भी मौजूद रहे। दिल्ली में आज सवेरे घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस की दो हेड कांस्टेबलों ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 104 लापता बच्चों का पता लगाया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नरेला सिंधु बॉर्डर पर ग्रैप 4 के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया। राजधानी के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जारी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।